आलोचकों की नज़र में कबीर। डॉक्टर सत्यपाल शर्मा। एक ऐसा संत कवि जिसने स्वयं अपने हाथ से साहित्य नहीं लिखा और जिसके उपदेशों के बावजूद उसके शिष्य हिंदू मुस्लिम भेद में ही बने रह गए थे। उसकी रचना संसार के संबंध में उसके आलोचकों का अनेक मुखी परस्पर विरोधी और विवादास्पद होना अस्वाभाविक नहीं है। कबीर एक ऐसे संत कवि हैं जिनके अनुयायियों के अनेक पंथ उपपंथ निर्मित हुए। उनका नाम साधुता, सिद्धि, कवित्व और ज्ञान के प्रतीक के साथ ही मनोरंजक गालियों, कबीरा और जोगीड़ा से भी संबंध हुआ। जनजीवन, तीज त्यौहार, साधुता और तपस्या, उपासना और साहित्य लेखन में उनके नाम का विभिन्न रूपों में प्रयोग यह सिद्ध करता है कि कबीर मध्यकाल के सर्वाधिक प्रभावशाली संत थे। भारत की साधु परंपरा में कबीर संबंधी अध्ययन विश्लेषण लगातार होता रहा है। नाभादास, राघवदास, मुकुंद कवि के भक्तमाल, आयनी अकबरी, कबीर साहब की परिचयी, गुरु ग्रंथ, भक्तमाल की टीका, रज्जबी की सर्वगी तथा अनेक मध्यकालीन रचनाओं में कबीर के जीवन और कृतित्व के संबंध में इतने उल्लेख मिलते हैं कि उनकी छानबीन, सुसंगत व्याख्या और परवर्ती अध्ययनों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता बनी हुई है। विद्वान आलोचकों के बीच कबीर पर विवाद का एक मुख्य मुद्दा रहा है। कबीर की भक्ति और उनकी सामाजिक विचार पद्धति का भारतीय या विदेशी होना, भारतीय का आशय हिंदू या बौद्ध धर्म से तथा विदेशी का आशय इस्लाम से। कबीर की भक्ति को विदेशी मानने वाले उनकी भक्ति में आए तत्ववाद को स्वामी एकेश्वरवाद तथा प्रेम तत्व को तसव्वुफ सूफी मत से प्रभावित मानते हैं। इसके विपरीत कबीर को भारतीय परंपरा में स्थापित करने वाले उन पर इस्लाम का विशेष प्रभाव नहीं मानते। कबीर और दूसरे भक्त कवियों को एक नए ढंग से देखने की शुरुआत ईसाइयों द्वारा हुई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कबीर पर ईसाई प्रभाव दिखाकर उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में स्थापित करने के प्रयास हुए। ब्रिटिश आलोचकों के अनुसार भारत का भक्ति आंदोलन ऐतिहासिक रूप से हिंदू व मुस्लिम जातियों के संघर्ष का प्रतिफलन था और दार्शनिक आध्यात्मिक रूप से ईसाई नहीं तो कम से कम स्वामी प्रभाव का परिणाम था। इन दोनों मान्यताओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति F.E.K. ने की। सन 1810 ईस्वी में प्रकाशित स्केच ऑफ द सिख पुस्तक में जॉन मैलकम ने कबीर को सूफी एवं जुलाहा कहा, किंतु H.H. विल्सन ने उन्हें वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत रखा। मोनियर विलियम्स के अनुसार कबीर जन्मना एक मुसलमान थे जो रामानंद से प्रभावित होकर हिंदू बन गए। इस्लामी प्रभाव के कारण वैष्णव संप्रदाय से मूर्ति पूजा विरोधी कबीर पंथ का विकास हुआ। विलियम्स ने कबीर को हिंदू मुस्लिम ऐक्य के विधायक के रूप में देखा। पिनकॉट ने लिखा है कि कबीर ने पूरे मुसलमानी जोश के साथ मूर्ति पूजा का खंडन किया। M.A. मैकलिफ ने कबीर आदि भक्तों के विचारों की तुलना यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन से की और कबीर के उपदेश को रहस्यपरक बताया। G.H. वेस्टकॉट ने अपनी पुस्तक कबीर एंड कबीर पंथ में कबीर को ईसाई मिशनरी का पूर्व पुरुष मानते हुए ऐसे सूफी के रूप में प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजकों को एकेश्वरवाद के पवित्र मार्ग पर लाना था। ब्रिटिश आलोचकों द्वारा कबीर आदि संत कवियों पर ईसाई प्रभाव देखना उनके पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बाद में हिंदी आलोचकों ने ईसाई प्रभाव मानने का विरोध किया। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने कबीर को मर्मी साधक मानते हुए उनके रहस्यवाद पर जोर दिया। आचार्य चित्तमोहन सेन ने सन 1910 ईस्वी में कबीर वाणी का संकलन बंगला अनुवाद के साथ प्रकाशित कराया। आचार्य सेन ने कबीर के 10,000 पदों का संकलन मौखिक परंपरा से प्राप्त पाठ के आधार पर किया। आचार्य चित्तमोहन सेन ने बल देकर कहा कि कबीर जाति पाति का खंडन करते हैं। सेन पहले आलोचक हैं जिन्होंने कहा कि जाति पाति और मूर्ति पूजा का खंडन इस्लाम का प्रभाव नहीं बल्कि इस्लाम के पहले भारत में नाथों सिद्धों की परंपरा का विकास है। आचार्य सेन ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि व्यापक पैमाने पर जो धर्मांतरण हुआ वह सिर्फ हिंसा व तलवार के कारण नहीं बल्कि इस्लाम में समानता आदि का आकर्षण भी था। सेन ने यह भी संकेत किया था कि कबीर का जन्म संभवतः सद्य धर्मांतरित जोगी जाति में हुआ। इसे आगे चलकर आचार्य हजेर प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध किया। सेन के अनुसार भक्ति में व्यक्त होने वाली आध्यात्मिक अभिव्यक्ति इस्लाम के समक्ष पूर्व पराजय टालने के उद्देश्य थी। निर्गुण भक्ति इस्लाम आक्रमण के समय सांस्कृतिक परिवेश को नष्ट होने से बचाने हेतु थी। निसंदेह आचार्य सेन के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निष्कर्षों ने बाद के आलोचकों को प्रभावित किया। मिश्र बंधु विनोद में कबीर का परिचय दिया गया था। इसमें कबीर कवि के रूप में नहीं बल्कि समाज सुधारक के रूप में हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार कबीर ने जोर देकर तो अपने को पैगंबर नहीं कहा, किंतु कहीं कहीं इसकी ध्वनि अवश्य निकलती है। कबीर ने अपनी रचना साहित्य का आनंद प्रदान करने के लिए न करके उपदेशार्थ की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली 1916 नामक पुस्तक में वेस्टकॉट के मत की आलोचना की और कबीर के विचारों से असहमति प्रकट की। हरिऔध के कबीर संबंधी मत को तत्कालीन सवर्णों की चिंताओं का द्योतक माना जा सकता है। हरिऔध का विचार था कि यदि कबीर ने वेद आदि पढ़ा होता तो वे इसका ऐसा खंडन नहीं करते। दूसरे शब्दों में कबीर का खंडन तर्कसम्मत नहीं बल्कि उनकी अज्ञानता है। हिंदी साहित्य में कबीर का गंभीर मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा होता है। उन्होंने साहित्य का मूल्यांकन एक निश्चित दृष्टि के आधार पर करते हुए आग्रहपूर्वक साहित्य को सामाजिक संदर्भ से जोड़ा। शुक्ल जी ने उसी को महान साहित्य माना है जो लोक धर्म के अनुकूल है। उनके लोक धर्म को वर्णाश्रम धर्म का पर्याय कहा जा सकता है। शुक्ल जी के विचार में हिंदू समाज इतने आक्रमणों और संघर्षों के बाद भी सुरक्षित है तो इसका कारण वर्णाश्रम धर्म है। उनकी दृष्टि में जो वर्णाश्रम धर्म का विरोध करता है वह सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करता है, इसलिए उन्होंने कबीर को लोक विरोधी माना है। वस्तुतः शुक्ल जी की खोज हिंदू जाति के जाति कवि की थी। वे कबीर पर एकेश्वरवाद और नाथपंथ का प्रभाव मानकर चल रहे थे। इन दोनों में ही कुछ बातें भारतीय भक्ति मार्ग के विरुद्ध थीं। अतः आचार्य शुक्ल की भक्ति पद्धति को विदेशी मानते हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ शुक्ल जी कबीर में भारतीयता के लक्षण न खोज कर पहले भारतीयता का लक्षण निर्धारित कर लेते हैं और जब इन लक्षणों में कबीर फिट नहीं बैठते तो उनकी आलोचना करते हैं, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने जायसी व कबीर की तुलना करते हुए दिखाया है कि भावुकता से वंचित कबीर की कविता का विशेष उत्कृष्ट नहीं है। उनके अनुसार कबीर ने हिंदू मुसलमान पंडित मुल्ला सबको लताड़ा, लेकिन उसका तीखापन लोगों को अधिक प्रभावित न कर सका। शुक्ल जी ने जायसी को लोक धर्म पर आस्था रखने वाला तथा कबीर को लोक धर्म का तिरस्कर्तक बताया। उनके अनुसार जायसी में औदार्य था व औदात्त नहीं, जो दूसरों को चिढ़ाने के काम आता है। यहाँ औदात्त का संकेत निश्चित रूप से कबीर की तरफ है। शुक्ल जी जायसी में सामाजिकता और कबीर में वैयक्तिकता, जायसी में भाव प्रमणता तथा कबीर में अमन्यता यानी भावशून्यता देखते हैं। उन्हें अंगद की अमन्यता अच्छी लगती है मगर कबीर की नहीं। जिस भावुकता का अभाव उन्हें केशों में खटकता है वही कबीर में भी। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर आदि निर्गुण संतों में पाया जाने वाला ज्ञान का अवयव भारतीय वेदांत का है तथा उनका प्रेम तत्व सूफियों का है। शुक्ल ने कबीर को साम्य कश्यपवाद से प्रभावित माना है, जबकि मूर्ति पूजा का विरोध करने का अर्थ साम्य कश्यपवाद का पक्षधर होना नहीं है। एकेश्वरवाद के अनुसार सृष्टि ईश्वर द्वारा बनाई गई है और ईश्वर अवतार लेता है, जबकि कबीर ईश्वर को सृष्टि से अलग नहीं मानते, वह घट घट में है तथा कबीर अवतारवाद को भी नहीं मानते। रामानंद को कबीर का दीक्षा गुरु मानने के बावजूद आचार्य शुक्ल कबीर को वैष्णव नहीं मानते, क्योंकि आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे। शुक्ल जी ने कबीर की रचनाओं को साहित्यिक नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार इसमें संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास नहीं पाया गया जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता था। इसकी भाषा शैली अधिकतर अव्यवस्थित, ऊटपटांग और सधुक्कड़ी है। अपनी इन मान्यताओं के बावजूद आचार्य शुक्ल ने कबीर की महत्ता दर्शाते हुए लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को भी आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाग जगाया। इतना ही नहीं, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुख से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। यह तथ्य है कि आगे चलकर आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की प्रतिभा और व्यंग निपुणता को सिद्ध करने के लिए उस पर विस्तार से प्रकाश डाला। सूरदास नामक पुस्तक में संकलित भक्ति का विकास निबंध में आचार्य शुक्ल की मान्यता है कि लोक धर्म के साथ सामंजस्य भारतीय भक्ति मार्ग की वह पहचान है जो उसे विदेशी भक्ति मार्ग से अलग करती है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि चूंकि शुक्ल जी की दृष्टि में कबीर लोक विरोधी हैं, अतः उनका भक्ति मार्ग भी अभारती है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकाशन के बाद आचार्य शुक्ल भक्ति काव्य के सबसे बड़े हस्ताक्षर बन चुके थे, अतः बाद के विमर्शों में कबीर के अभारती या भारतीय परंपरा का मुद्दा प्रधान बना रहा। श्री श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में शुक्ल जी की मान्यताओं का प्रतिवाद करते हुए कहा कि निर्गुण भक्ति कठिन समय में डूबते को तिनके का सहारा थी, सगुण भक्ति के लिए रास्ता निर्गुण ने बनाया था। दास के अनुसार शूद्रों में जो आत्मविश्वास आया सवर्णों पर तीखा आक्षेप किया गया वो मुस्लिम संपर्क का परिणाम था। आचार्य शुक्ल ने कबीर को भावुक मानना ठीक नहीं समझा, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर के रहस्यवाद को ब्रह्म जिज्ञासा मूलक होने के कारण न सिर्फ भारतीय कहा बल्कि उसे भावुक भी माना। दास के अनुसार तुलसी के बाद उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रभाव कबीर का है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की पुस्तक हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय हिंदी में पहला प्रयत्न था जिसमें पूरे निर्गुण संप्रदाय को एक साथ निरूपित करने का प्रयास हुआ। आचार्य द्विवेदी के अनुसार कबीर उस जाति के थे जो इस्लाम स्वीकार करने के बावजूद उसमें अंतर्भुक्त नहीं हुई। बड़थवाल ने सबसे पहले यह कह दिया था कि संभवतः कबीर जुलाहा थे। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया था कि जोगी समाज विरोधी नहीं थे। डॉक्टर बड़थवाल के अनुसार कबीर का प्रेम तत्व रामानंद द्वारा प्रतिपादित नारदी भक्ति का अंग है, न कि सूफियों का प्रभाव। इस तरह बड़थवाल ने रामानंद तथा कबीर के प्रेम तत्व पर इस्लामी प्रभाव का खंडन किया। कबीर के सामाजिक विचारों को उनके रहस्य अनुभवों का परिणाम मानते हुए बड़थवाल ने कबीर को सारग्रही और ऐक्य विधायक माना। उनके अनुसार तत्कालीन समाज में सांप्रदायिक एकता और सामाजिक न्याय में बाधक दो बातें थी, मुस्लिम धर्मांधता और शूद्रों पर सामाजिक अत्याचार। इनके निराकरण के लिए कबीर के नायकत्व में इस नवीन निर्गुणवाद में समय की सब आवश्यकताओं की पूर्ति का आयोजन हुआ। डॉक्टर बड़थवाल पहले आलोचक है जिन्होंने कबीर को प्रगतिशील के रूप में देखा। उन्होंने जो स्थापनाएं प्रस्तुत की बाद के अध्ययनों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आचार्य शुक्ल के बाद कबीर के आलोचकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में स्थापित किया। कबीर आचार्य द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने लोक धर्म के आशय को बदल दिया। वे समाज में प्रचलित आचारों विचारों तथा संस्कारों को लोक धर्म मानते हैं। द्विवेदी जी का लोक धर्म शुक्ल जी के लोक धर्म से अलग है। द्विवेदी जी की दृष्टि में कबीर की कविता का संबंध शास्त्र से कम और लोक धर्म से अधिक है। कबीर के राम पुराण प्रतिपादित अवतार नहीं थे। कबीर ईश्वर को गुणातीत मानते हुए उसे निर्गुण शब्द से प्रकट करते हैं। यह तर्क और विद्या से नहीं बस प्रेम और अनुभव से जाना जा सकता है, इसे बताने के लिए कबीर ने बार बार घूंगे का गुड़ कहकर इसे याद किया। पहले यह माना जाता था कि कबीर की कविता का प्रयोजन समाज सुधार है, लेकिन द्विवेदी जी के अनुसार कबीर का प्रथम प्रयोजन भक्ति थी। वे कबीर की काव्यात्मकता व सामाजिकता को भक्ति का बाय प्रोडक्ट मानते हुए भी उसे महत्व देते हैं। उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। कबीर ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिनसे अगर उपयोग किया जाए तो समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, पर इसीलिए उनको समाज सुधारक समझना गलती है। द्विवेदी जी कबीर को समन्वयवादी नहीं मानते। समस्त भाईचारों के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। समझौता उनका रास्ता नहीं था। कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके आचार्य द्विवेदी ने उनको युगावतारी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके शब्दों में, हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती फकड़ना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटका कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। कबीर की भाषा के संदर्भ में उन्होंने लिखा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार से नजर आती है। इसी तरह उनके व्यंग के संदर्भ में, सच पूछा जाए तो आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह द्विवेदी जी ने कबीर को उनकी भक्ति कविता सामाजिक विचार व्यक्तित्व भाषा व्यंग सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ माना। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तर भारत की संत परंपरा और कबीर के साहित्य परक में कबीर पर तब तक के अध्ययनों को आंशिक रूप से ही सत्य माना। उनके शब्दों में, कबीर शुद्ध सत्य के पुजारी थे और उसी की अनुभूति और अभिव्यक्ति उनके आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। चतुर्वेदी जी ने कबीर के समाज सुधार को बाय प्रोडक्ट मानने का विरोध करते हुए उन्हें धर्म के माध्यम से प्रयत्नशील समाज सुधारक की छवि प्रदान की। साथ इन्होंने कबीर की कविता को लोक साहित्य से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि कबीर की कविता प्रकृत परंपरा से विकसित है। उनके शब्दों में, कबीर साहब की रचनाओं में काव्य कला का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता, उनमें एक अपना निराला सौंदर्य है जो उनकी प्रतिभा के कारण बिना किसी प्रयास के ही आप से आप फूट पड़ा है। गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार कबीर काव्य के वर्ण विषय आध्यात्मिक विचार है, लौकिक भाव नहीं। उनके जीवन का लक्ष्य भाव सागर में डूबते हुए लोगों के लिए साखी कहना था, न कि रसिकों के लिए काव्य की चित्रकारी करना। राम कुमार वर्मा की दृष्टि में कबीर सच्चे रहस्यवादी थे। विजयेंद्र स्नातक के अनुसार कबीर सहज में आस्था रखने वाले मानवतावादी व्यक्ति थे। इस्लाम को स्वीकार करने पर भी वह मजहबी कट्टरता से कुछ दूर थे। उनका जनता के उद्बोधन से ही व्यतीत हुआ। नर में नारायण की प्रतीति ने उन्हें मानवतावाद की ओर उन्मुख किया। कबीर के रचना संसार पर गंभीर विचार विमर्श का दौर आलोचकों में अभी भी जारी है। यहाँ उन पर विचार करने का अवकाश नहीं है। कबीर के वाणी के भीतर बैठकर उनके हृदय के मर्म को समझना आसान नहीं है। उन्होंने कबीर को प्रायः नीरस, शुष्क, अखड़ महात्मा समझा। उन्होंने कबीर के संसार के प्रति दृढ़ वैराग्य प्रेम से भरे हुए कबीर के हृदय की कसकसाहट को समझने की चेष्टा नहीं की। कबीर मूलतः भक्त हैं और प्रेम के कवि हैं। कबीर के यहाँ योग प्रेम के साधन के रूप में है। कबीर का तीखापन और कड़वापन प्रेम से उपजा है। कबीर की कविता गहनतम मानसिक अनुभूति की परिचायक है। यह कहने में संकोच नहीं है कि गहरे अनुभव और गहरी जिज्ञासा से उत्पन्न दंश पाखंडी विनम्रता से अच्छा है।